दंडवत बंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखहु प्रभु नानक दे करहथ ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी बेसुमार यथाह अगनत अतोलै ज्यों बुलावहु त्यों नानक दास बोलै दसों पातशाहियों के ज्योत स्वरूप चवर तखत के मालिक कलयुग के जहाज शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में उपस्थित गुरु के साजी निवाजी साध संगत जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। साध संगत जी अभी अभी आप बहुत ही सुंदर इलाही वाणी का कीर्तन सुन रहे थे। के हे वाहे गुरु तू ही मेरी माता है तू ही मेरा पिता है तू ही मेरा भाई है तू ही मेरा बंधप है तू ही मेरा सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवतम। के हे वाहे गुरु तू हमारे लिए सब कुछ है सब कुछ है। जब कोई इंसान परमपिता परमात्मा वाहिगुरु के चरणों में अपने को छोड़ देता है यह जान करके कि हमारा रक्षा करने वाला वाहिगुरु माता पिता भाई के समान है फिर परमात्मा उसको अपने गोद में उठा लेते हैं। परमात्मा ईश्वर हमें किस प्रकार रक्षा करता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को रोकती है कि जलती हुई अग्नि में हाथ ना डाल दे बच्चा कुएं में ना गिर जाए कोई सांप बिच्छू ना काट ले विपत्तियों से बचाती है माता रक्षा करती है। लेकिन सिर्फ रक्षा करने से बात नहीं बनती माँ बच्चे को रक्षा करती है और दूध पिला करके पालना भी करती है। रक्षा करना एक बात है पालना करना और बात है। इसी तरह से जो ईश्वर है परमात्मा वाहिगुरु वो वो हमारी कदम कदम पर माता के समान रक्षा करते हैं। और पिता के समान जो है रिजक ला करके हमें भोजन पहुंचाता है, पालना करता है। इसलिए उस वाहेगुरु परमात्मा की महिमा जो है वो अपार है, अपरंपर, इसलिए कहा गया है वो अपरंपर। सत्संग जी, आप लोग जिस तरह है साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन पवित्र वाणी श्लोक सहज कीर्ति, जिसकी कथा आप लोग लड़ीवार सुन रहे हैं, साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश करते हैं, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाश न है, भगत वछल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म। यहाँ पर खखा के नीचे जो है सो यैया है, इसका उच्चारण जो है रखिया, संस्कृत का शब्द है रक्षा। रक्षा का मतलब होता है कि किसी प्रकार की भी विपत्ति हो उससे बचाना, उसको रक्षा करते हैं, रक्षा करना। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मन। सत्संग जी यहाँ पर बहुत गौर से देखना, गुरु महाराज ने सिर भी बोले हैं और मस्तक भी बोले हैं। सिर और मस्तक में क्या फर्क है? सिर का भाव है ये पूरा सिर, जिसमें दो आंखें भी है, दो कान भी है, मुंह भी है, नाक भी है, ये पूरे को सिर कहते हैं। और मस्तक का भाव होता है मस्तिष्क, बुद्धि। हालांकि ये टीकाकार ने मस्तक का अर्थ मथा ही किया है, लेकिन ये टोटली गलत है। मस्तक का भाव होता है मस्तिष्क, बुद्धि। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मन। यदि मस्तक का भाव मथा ही हो तो सिर बोलने का फिर क्या फायदा? सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मन। जो सिर है हमारा, इस पूरे शरीर का शिरोमणि है, शिरोमणि है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मन। जो व्यापक परमात्मा है परे से परे, पार ब्रह्म, वो हमारे सिर की भी रक्षा करता है और हमारी बुद्धि की रक्षा करता है। जब हम वाहेगुरु के चरणों में अरदास करते हैं कि हे सच्चे पातशाह बुद्धिम ददामी, कि हमको ऐसी बुद्धि जो दो जिससे मैं राइट अंडरस्टैंडिंग, मैं सही सोच सकूं, बुद्धिम ददामी, तो परमात्मा हमें क्या करते हैं? सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मन्। हमारे सिर की भी रक्षा करते हैं और बुद्धि की भी रक्षा करते हैं। हस्त काया रखिया परमेश्वर है, हमारे हाथ की रक्षा करते हैं। जब मेरा हाथ किसी के पॉकेट को काटने जाता है, या इस हाथ के द्वारा हम जब किसी के साथ अन्याय करते हैं, मारपीट करते हैं तो परमात्मा हमारी हाथ की रक्षा करता है कि ऐ इंसान कभी भी जो है सो तुम गरीब को ना सताओ, इस हाथ में जो शक्ति दिया इसका दुरुपयोग ना करो। ये हाथ तुमको इसलिए दिया है, एक तो कृत करने के लिए दिया है और दूसरा गरीब के ऊपर असहाय के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो उस वक्त उसकी रक्षा के लिए दिया है ये हाथ। हस्त मतलब हाथ और काया का मतलब होता है शरीर। हस्त काया रखिया परमेश्वरा, और इस शरीर के अंदर कोई रोग ना हो जाए, यह शरीर विकारी ना हो जाए, परमात्मा हमारे शरीर की रक्षा करती है। क्योंकि शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर के अंदर ठाकुर है, वाहिगुरु है, परमात्मा है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर निरोग नहीं रहेगा तो सेवा कैसे करेंगे, भक्ति कैसे करेंगे, सिमरन कैसे करेंगे, कीर्त करना, नाम जपना, वर्ण छकना, ये तीनों शरीर स्वस्थ रहने पर ही होता है। रोगी शरीर क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हे वाहेगुरु, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर। सत्संग जी, ये जो शब्द है इसको रक्षा के शब्द कहते हैं। रक्षा कवच है। जिन लोगों को रात में बुरे सपने आते हैं उसको हाथ पांव धो करके इस शब्द को पढ़ करके सोना चाहिए, एक। दूसरा, ये जो शब्द है जब भी हम घर से जाएं कोई नए काम के लिए, या मन में ये शंका हो कि आगे विपत्ति है, तो ये शब्द को पढ़ के जाना चाहिए। एक कवच के रूप में, ढाल के रूप में आपकी रक्षा करेगा। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ये हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मन्, हस्त काया रखिया परमेश्वर, आत्म रखिया गोपाल स्वामी। यहाँ पर आत्मा, आत्म का भाव है जीवात्मा। एक शुद्ध आत्मा है जो परमात्मा का स्वरूप है, दूसरा है जीवात्मा जो इस शरीर से निकल करके और शरीरों में प्रवेश करता है, जो 84 लाख जूनियों में जाता है। यहाँ पर गुरु महाराज आत्म का भाव है जी, आत्म रखिया गोपाल स्वामी। जो गोपाल है, इंद्रियों को पालना करने वाला, धरती को पालना करने वाला, जो स्वामी है, स्वामी का मतलब मालिक, जो जगत का मालिक है, जो इंद्रियों का मालिक है, जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, बादशाह है, जो आत्म रखिया गोपाल स्वामी, जो वाहेगुरु है वो स्वामी है। धर्म चरण रखिया जगदीश्वर, धर्म चरण रखिया जगदीश्वर, और जो वाहेगुरु जगत का ईश्वर है वो हमारे धन की रक्षा करता है। यहाँ पर धन का भाव सिर्फ सांसारिक धन नहीं, जो हमारे शुभ गुण है ना, ये भी एक संपत्ति है, और वास्तविक संपत्ति तो शुभ गुण ही है। ये वाहेगुरु के चरणों में जब हम ध्यान करते हैं तो वाहेगुरु हमारे धन की रक्षा करता है, शुभ गुणों की रक्षा करता है, पुण्य की रक्षा करता है। धन चरण रखिया जगदीश्वर, सर्व रखिया गुरुदयाल है। और जो गुरु ईश्वर रूप में है वो तो सब कुछ की रक्षा करता है। गुरु परमेश्वर एक हो जान। जो हमारा गुरु है साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी, वो तो सर्व रखिया, सर्व रखिया, हर एक पासे रक्षा करता है। सर्व रखिया गुरु दयाल, क्योंकि वो दया के मूर्ति हैं। भय दुख विनाश न है, हमें 24 घंटा भय लगा है कि कल क्या होगा, नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा, बच्चे नहीं पूछेंगे तो क्या होगा, समझे ना, हमेशा भय है। और मर जाएंगे तो क्या होगा, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको भविष्य की चिंता नहीं है। चिंता तो सिर्फ ज्ञानी को नहीं होता। ज्ञानी कौन है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी में, जो हमेशा सम रहता है, सम ऑलवेज, आए हरख न गए सो, जो ऑलवेज वर्तमान में जीता है, जिसका भविष्य है ही नहीं कुछ, जो हमेशा थैंक्स करता है, वाहेगुरु तुमने 40 साल 50 साल 60 साल हमें आनंद से रखा है और पूर्ण भरोसा है कि आगे भी इससे अच्छा रखो। जिसको कोई गिला नहीं है प्रभु के आगे, उसको कौन दुखी कर सकता है। हम दुखी क्यों होते हैं? दुखी होने का कारण है कि हमने ये सोच बैठा है कि हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऑलवेज सुख मिले, ऑलवेज मान मिले, ऑलवेज इनकम होता रहे। एक पक्ष को हमने ग्रहण किया है, जबकि ये जो संसार है ये ड्यूअलिटी है, दोनों इकट्ठा ही है। सुख है तो दुख भी अवश्य आएगा, रात है तो दिन अवश्य होगा, समझे। आज मान मिल रहा है तो अपमान भी अवश्य मिलेगा, अवश्य, ये हो नहीं सकता। जब अवतारों को अपमान मिला है, लोग गालियां दिए हैं, संतों महापुरुष ब्रह्म ज्ञानियों को दिए, तो हम आप किस कहते कि मिली। ये जगत की रीति है कि ड्यूअलिटी से चलता है, द्वंद्व। यहाँ पर सब कुछ है। हम दुखी उसको कर सकते हैं जो एक चीज चाहता है, लेकिन जो टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, जो ये कहता है कि जो भी आ रहा है, सुख है तो उसको भी गले लगाएंगे और दुख को भी गले लगाएंगे, उसको तुम कैसे दुखी करोगे। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज को कोई दुखी कर सकता है, दुनिया का कोई हस्ती? बाबा मनी सिंह को कोई दुखी कर सकता है? भाई मतीदास, भाई सतीदास, और क्या कर लोगे? पानी में उबाल के देख लिया, बंद बंद काट के देख लिया, आरे में चीर के देख, इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है। हम लोगों तो कांटा पड़ जाए, हाय हाय परमात्मा के लगता है, मैं मुझे सारियान देखदा है वाहेगुरु, हमको तो देखदा ही नहीं, हमको ही कांटा चुभाना से शिकायत शिकायत। महीना में 30 दिन व्यापार, 29 दिन ठीक चले, एक दिन ना चले तो कुछ मतलब नहीं। गुरु जो है हमारे और टेढ़ी निगाह रखा है, और टेढ़ी निगाह तो उसकी होती नहीं कभी, हम ही उसको टेढ़ी निगाह से देख लेते हैं, समझे ना। उसकी निगाह हमेशा सवली होती। यहाँ पर उस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता जो टोटल एक्सेप्ट करता है प्रभु के, हे वाहिगुरु मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब राज दे तो कवन बढ़ाए, जो भीख मंगावे तो क्या घट जाए। मैं कहता हूँ कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा किसी का, जब आए थे तो 3 कपड़ा भी नहीं था, इससे ज़्यादा लॉस और क्या हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया, घाटा लग गया, सब कुछ हो गया, 3 कपड़े तक ले जाएगा और क्या। जो भी कुछ आपके पास है ना वो प्लस ही है, माइनस तो हुआ ही नहीं कभी। लेकिन रोना ही रोना ही रोना ही, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अंत में तो माइनस होके ही जाना है। कान से नहीं निकलेगा ना बाली तो कान को भी काट देते हैं, अच्छी तरह नहीं निकल रहा है जल्दी उसको, ऐसे भी तो जला ही देना इसलिए काट ही दो उसको। जो नज़दीकी है वही पहले आग देगा। इसलिए बहुत विचार करके देखो तो ना तो हमने कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाना है, रोटी कपड़ा मकान ये उपयोग के लिए है, यूज के लिए। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना कि लड़के का क्या होगा, इसका मतलब है हम ईश्वर को कर्ता नहीं जानते, हम अपने को कर्ता समझते हैं। पोतरे का क्या होगा, हमारी तो गुजर गई लेकिन बच्चे का क्या होगा। जिसने तुमको रखा है वो तुम्हारे बच्चे को भी रखेगा, तुम्हारे तो है ही नहीं ना बच्चे, बच्चे तो है ईश्वर। माता पिता जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते, कर्म हर एक व्यक्ति लेके आता है। इस बात को बहुत समझने की बात, हर एक इंसान अपना कर्म लेके आता है। भय दुख विनाश न, ये भय दुख कब विनसेगा, जब हमारे अंदर विवेक पैदा होगा। बहुत चीजा नाल भय दुख नहीं जा सकता, और जितना मर्जी सिक्योरिटी कर लो भय नहीं जा सकता। कहते हैं एक बार आदरणीय बाबा जी अपने दिल्ली गुरुद्वारे में, क्योंकि वो जंगल है ना चारों तरफ, तो मैदान के लिए गए आगे, तो बहुत से लोग विरोधी भी हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि मतलब गलत के ही दुश्मन होते हैं, अच्छे महापुरुषों के भी लोग दुश्मन हो जाते हैं। शुरू से देखो ना, गुरु अर्जन देव जी महाराज के दुश्मन के, सक्का भाई दुश्मन, क्या करोगे। तो किसी ने राइफल लेकर के बाबा जी की रक्षा के लिए ना कोई खड़ा रहा, बाबा जी मैदान होकर के आए, कहते अभी तुम क्यों खड़ा था वहाँ पर राइफल, कहते महाराज मैं सोचा कि कोई नुकसान ना पहुँचा दे, जो समा ठीक नहीं है आजकल जो, कहते आगे से ये काम नहीं करना, आगे से ये काम नहीं करना, आगे से ये काम नहीं करना। जो सारी पृथ्वी की रक्षा कर रहा है वो हमारी भी रक्षा कर रहा है। ये अवस्था निर्भय की अवस्था सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी को आ सकती है, क्योंकि इसकी परिभाषा गुरु तेग बहादुर जी ने दी है, भय काहू को देत नह, नह भय मानत आन, कह नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे। एक आदरणीय विहंगम लोग हमको सुना रहे थे कि किसी पिंड में कह रहे थे कि जी हम लोग चलते हैं सारे मिल करके और बाबा जी को गुस्से करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्लानिंग बना रहे थे बहुत कुछ। तो बाबा जी कार पर बैठे, किसी भी हंगम ने कार के पीछे डिक्की में काफ़ी जो है सो कृपान गड़ा से ये सब चीज़ रख ली। बाबा जी ने देख ली, कहते भाई डिक्की में क्यों रखे हो? कहते महाराज जिथे जा रहे हैं ना उथे बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं और नुकसान करेंगे जो है सो हमारे ऊपर वार करेंगे, तो रक्षा कर। कहते सारा निकाल दो सारा, एक तिनका भी लेके नहीं जाना है। और जब बाबा जी उथे पहुँचे, लोग सारे इकट्ठे थे, बहुत भीड़ थी, सारे चर्चा कर रहे थे ये करेंगे जाके वो करेंगे। वहाँ पर बाबा जी जो है अकेले जाकर कहते हैं जी हम आ गए हैं, गुरुदेव को मारो कि जो नुकसान करना है करो, हम आ गए। कहते हैं सारे लोगों के बुद्धि ही बदल गई, साधुनाम दर्शनम पुण्यम। सारे लोग जो है सो कोई अपना कपड़ा कोई कुछ, सारे लोग साफ सुफ करने लगे, आओ महाराज बैठो बैठो, सारे लोग। महापुरुष लोग जिधर जाते हैं ना उनकी भक्ति, उनकी तपस्या, उनकी महिमा भी साथ जाता है, समझे ना, हवा बदल देते हैं। कहते हैं भगवान महावीर जब चलते थे तो जिन जंगलों से जाते थे ना वो दरख्त की टहनियाँ झुक जाती थी और उनके मस्तक को चूमते थे, ऐसा कहते। जिन दरख्तों में कभी फल नहीं लगता था वो फल लग जाते थे, जाते फूल खिल जाते थे। इसलिए साध संगत जी, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं जो परमात्मा है भाई गुरु, भय दुख विनाशन है। ज्ञानी को कभी भय नहीं होता, आपको प्रमाण तो बता दिया ना, भय काहो को देत नह नह भय मानत आन। ज्ञानी पुरुष भय क्यों नहीं मानता, इसमें भी एक राज है। ज्ञानी पुरुष अपने को शरीर नहीं जानता है, ज्ञानी पुरुष अपने को आत्मा जानता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, हे अर्जुन नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गिला नहीं सकता। और शरीर का जहाँ तक सवाल है, शरीर की रक्षा तो जितनी मर्जी कर लो, दुनिया के बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक, बड़े से बड़े वैद्य, बड़े से बड़े औलिये इसकी रक्षा नहीं कर सकता, परमानेंटली कर ही नहीं सकता। ये तो इसका नाश हो रहा है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षते और विनश्यते, ये छह विकार हैं शरीर के, ये तो नाश होगा ही होगा। इसलिए ज्ञानी पुरुष को कोई भय नहीं है, भय दुख विनाशन है। और परमात्मा जो है हमारे दुखों को नाश करता है। भगत वछल अनाथ नाथे, वो जो वाहिगुरु है, रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन्तो साज सवार सिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। देखो अंदर है क्या, अंदर गरम पानी उबलता हुआ है और इसमें हम पुठे लटके रहते हैं। देखो कैसा संकट का टाइम, पुठे लटके रहते हैं और गरम पानी उबलता रहता है। कहते हैं जब वैद्य लोग नब्ज देखते हैं ना, यदि खाना ना पचे तो ये समझ जाता है वैद्य कि इसकी पेट की अग्नि मंद हो गई है, स्लो हो गया है। फिर वो दवाई देते हैं कि अग्नि तेज हो जाए, अग्नि को तेज करने के लिए। तो पेट के अंदर अग्नि है और बच्चा ऊपर पुठा लटका होता है। गुरु महाराज कहते हैं गर्भ अग्न में है जिन्ह उबारिया, हाथ दे के रक्षा करते हैं। जैसे अभिमन्यु गर्भ में था ना, तो उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया, उसकी माँ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र फेंका और चारों तरफ उसकी रक्षा, जो उसके गर्भ की रक्षा परमात्मा ने भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने, सिर्फ उनकी रक्षा नहीं की है, अभिमन्यु की रक्षा नहीं हुआ गर्भ में, देखा जाए तो सबकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भर जोवन भोजन सुख सुध, वृद्ध भया ऊपर साक सैन, मुख अपियाओ बैठ को देन। निमाने को जो देतो मान, सगल भूखे को करता दान, गर्भ घोर मह राजखन हार, तिस ठाकुर को सदा नमस्कार। दद्दा दाता एक है सबको देवन हार, देंदे तोटना आवई अगनत भरे भंड, दिए जा रहा है, देंदा दे लेंदे थक पाए, लेने वाला थक जाता है, देने वाला थकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि लेने वाले की सीमा है, देने वाले की तो कोई सीमा नहीं है। जिनकन कीते अखी नाक, जिन जिहवा दीती बोले तात, जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सो जाए। यहाँ पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं कि सात संगत जी, एक राजा बलि हुआ है, पाताल का राजा, एक प्रह्लाद का वंशज था। बलि राजा क्योंकि दैत्य कुल था ना उसका, ये यज्ञ कर रहा था और इसने अश्वमेध 98 यज्ञ कर लिए। 100 महा अश्वमेध यज्ञ जो कर ले उसको इंद्र की पदवी मिलती। इंद्र ने चिंतित हो गया कि ये 100 कर लिया तो मुझको गद्दी छोड़ना पड़ेगा, 33 करोड़ देवताओं का ये मुखी बन जाएगा। उसने उसी वक्त भगवान को पुकारा, भगवान यदि राजा बलि इंद्र बन गया और ये दैत्य कुल का है तो सारे देवताओं को क्या होगा। भगवान उसी वक्त ब्राह्मण का रूप धारण करके पाताल गए। और राजा बलि जो था ना, था तो दैत्य कुल का लेकिन बहुत धर्मात्मा था, बहुत धर्मात्मा, सुबह पाठ करके उठता था और जो भी कुछ कोई मांग ले बस वो दे देता था, उसका नियम ही था कुछ भी मांग ले। भगवान ब्राह्मण का रूप बहुत बौना सा बन करके आए, सतयुग तय मानियो छलियो बल बावन भाई, सुना ही था आपने, त्रेते तय मानियो राम रघुवंश का है, द्वापर कृष्ण मुरार, कंस कृतार्थ, कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर का है। राजा बलि सुबह स्नान करके पाठ करके आ ही रहा था, ए ब्राह्मण बन के देवता कहते हैं राजन मैंने तुम्हारी बहुत कीर्ति सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो, मैं कुछ मांगने आया हूँ तुमसे। राजा बलि कहता है जो भी कुछ मांगना है मांग लो, मैंने आज तक किसी को निराश नहीं भेजा। कहते चाहिए तो मुझे कुछ ने थोड़ी सी चीज चाहिए, लेकिन तुम प्रण कर लो, वादा तो लोग बहुत कर देते हैं, देते नहीं। कहते नहीं, मैं प्रण करता। उसी वक्त उसका गुरु था शुक्राचार्य, उसने मना किया, कि जो सामने है मांगने वाला ये कोई साधारण नहीं है, कुछ नहीं देना है इसे, मुकर जाओ, ये आप भगवान आया है मांगने के लिए। राजा बलि कहता है कि जब स्वयं भगवान ही मांगने आ गया मेरे पास तो सब कुछ तो उसी का है, मेरा है ही क्या, मेरा है ही क्या गुरुदेव, ये तो मेरा सौभाग्य है कि खुद भगवान लेने आ गया। लेकिन साथ संगत जी कमंडल में पानी था, वो पानी हाथ में लेके मंत्र पढ़ने लगा। शुक्राचार्य ने सुखम रूप धारण करके उस टूटी में के पानी ना निकले, प्रण ना करे, उसको पता था कि ये सब कुछ ले जाएगा। उस वक्त राजा बलि ने एक सींख उठाया और सींख से उसके अंदर मारा टूटी में, कमंडल के टूटी। जब टूटी मारा तो वो शुक्राचार्य के आँख में लगा, खून बहने लगा। हाथ में ले करके जल प्रण करता है कि जो तुम मांगोगे हम देंगे उसको। बस कहता है मुझे तो तीन पग धरती चाहिए अपने पग। कहते तीन पग क्या, जितना मर्जी ले लो। कहते मैं अपने पग से लूँगा, हमारे छोटे छोटे पाँव हैं ना, इसी से लूँगा। सात संगत जी कहते हैं एव मस्तु, ऐसा ही हो। एक पग से तो उसने सारी धरती ले लिया, इतना विराट रूप धारण किया भगवान ने सारी धरती, और दूसरे में जो है सो पाताल आकाश सब कुछ ले लिया। कहता है बलि तीसरा पग कहाँ रखूँ मैं, सोच में पड़ गया राजा बलि, सोच में पड़ गया अब क्या करें। कहते हैं भगवान आप चिंता ना करो, तीसरा पग के लिए जगह है, तीसरा पग आप हमारे मस्तक पर रख लो। तो तीसरा पग जो है सो भगवान ने रख। भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में बहुत अच्छा वर्णन किए हैं, बल राजा घर आपने अंदर बैठा जग करावे, बावन रूपी आया चार विद मुख पाठ सुनावे, राजे अंदर सदया मंग स्वामी जो तुध भावे, अछल छलन तुध आया शुक्र प्रोहत कह समझावे, करो ढाई धरत मंग पिछों दे त्रह लो न मावे, दो करवा कर तिन लो बल राजा ले पगर मिणावे, बल छल आप छलायन होय दयाल मिले गल लावे, दिता राज पतालदा होय अधीन भगत जस गावे, होय दरवान महा सुख पावे। परमात्मा वाहिगुरु ने कहता है जब तूने दे ही दिया है तो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे दरवान पर रहूँगा। भगत वछल अनाथ नाथे, वो जो वाहिगुरु परमात्मा है भगत वछल, भगत वछल का मतलब होता है भगत का प्यारा, भगत के वश में हो जाता है, और अनाथा का नाथ जिसका कोई नहीं है उसका हो जाता है। शरण नानक पुरख अच्युत है, वो जो जो उस वाहिगुरु के शरण में चला जाता है उसका लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।
जस गायो संकट नामे।